ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश के विभिन्न जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार रहने पर जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। बाढ़ और भूस्खलन से कई राजमार्ग प्रभावित, रात में वाहनों के संचालन पर रोक। बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना लाने का सरकार को संसदीय समिति का निर्देश। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा ने कहा, नेपाल के लिए संसद द्वारा चुना गया कार्यकारी प्रमुख और मिश्रित निर्वाचन प्रणाली है सबसे उपयुक्त। और भारत के जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ में दो बच्चों और महिलाओं सहित 6 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अनुमानित स्तर की बड़ी बाढ़ का खतरा नहीं है, हालांकि विभिन्न जिलों की छोटी नदियों और नहरों में अचानक बाढ़ आने की आशंका बनी हुई है। बाढ़ विशेषज्ञ सौहार्द जोशी ने बताया कि वास्तविक वर्षा एक ही क्षेत्र में केंद्रित न होकर बिखरी हुई होने के कारण अनुमानित स्तर की बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने उच्च जोखिम वाले जिलों में रात के समय यातायात रोकने सहित अन्य पूर्व तैयारी के उपाय तेज कर दिए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि संभावित आपदा से निपटने के लिए नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, स्थानीय निकायों और स्वयंसेवकों को तैयारी की स्थिति में रखा गया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि काठमांडू स्थित गौरीघाट जलमापन केंद्र पर बागमती नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है। विभाग ने नदी किनारे और जल भराव वाले क्षेत्रों के निवासियों से कल सुबह तक उच्च सतर्कता बरतने की अपील की है। बाढ़ विशेषज्ञ विनोद पराजुली के अनुसार बागमती नदी का जलस्तर 2.7 मीटर पहुंचने पर खतरे का स्तर माना जाता है। विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अनावश्यक आवागमन से बचने, आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाने तथा बाढ़ और भूस्खलन संबंधी आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने का आग्रह किया है। लगातार वर्षा के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कई राजमार्ग प्रभावित हुए हैं। कुछ सड़क खंड पूर्ण रूप से अवरुद्ध हुए हैं, वहीं कुछ सड़कों पर रात के समय वाहन संचालन पर रोक लगाई गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए काभ्रे पुलान चौक सिंधुली को जोड़ने वाले बीपी राजमार्ग के खुरकोट नेपालथो कटुंजे बेसी खंड पर प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का संचालन अगली सूचना तक बंद रहेगा। इलाम नगर पालिका 9 के राजदुआली क्षेत्र में मेची राजमार्ग पर सड़क कीचड़ युक्त होने से यातायात बंद हो गया है। अर्घाखांची की पाणिनी गांव पालिका 2 ढूंगे कोला में चट्टान गिरने से साल झंडी ढोरपाटन सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है। सिंधु पालचोक के भोटेकुशी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण अरनिको राजमार्ग भी पूरी तरह बंद है। बागलों की जैमिनी नगर पालिका 8 में भूस्खलन से काली गंडकी कॉरिडोर अवरुद्ध हो गया है। काभरे पलांचौक के रोशी क्षेत्र में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बीपी राजमार्ग भी पूरी तरह बंद है। राष्ट्रीय गौरव वाले काली गंडकी कॉरिडोर अंतर्गत पेनी जोमसुम कोरला सड़क परियोजना रात के समय बंद की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने मुस्तांग जिले से बहने वाली काली गंडकी नदी सहित छोटी नदियों और नहरों में पानी का बहाव बड़े पैमाने पर बढ़ने की संभावना और आकस्मिक बाढ़ के जोखिम को देखते हुए पूर्व सतर्कता अपनाते हुए सड़क को रात के समय बंद किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने आज रात 10 बजे से नारायणगढ़ मुगलिन सड़क तथा चितवन की ओर पृथ्वी राजमार्ग पर यातायात बंद करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन कार्यालय चितवन के प्रमुख जिलाधिकारी गणेश अरियाल द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि चितवन सहित धादिंग और आसपास के जिलों में भूस्खलन का खतरा बढ़ने के कारण नारायणगढ़ मुगलिन काठमांडू सड़क रात 10 बजे के बाद बंद रहेगी। प्रशासन ने रात में यात्रा करने वाले यात्रियों और वाहन चालकों से स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायों के समन्वय में ही यात्रा करने की अपील की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय एवं मानवाधिकार समिति ने बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्य योजना लाने का निर्देश दिया है। समिति ने बाल सुधार गृहों से संबंधित निरीक्षण एवं अवलोकन उपसमिति की रिपोर्ट पर संबंधित मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद ये निर्देश दिया। समिति ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि सदस्यों और अधिकारियों से प्राप्त व्यावहारिक सुझावों को शामिल करते हुए रिपोर्ट को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और परिणाममुखी बनाया जाए तथा इसकी कार्ययोजना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा कि संविधान संशोधन पर चर्चा सुशासन को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। पोखरा में आयोजित एक विचार गोष्ठी में उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन से पहले प्राथमिकताएं तय की जानी चाहिए। उनके अनुसार नेपाल जैसे देश के लिए संसद द्वारा चुना गया कार्यकारी प्रमुख और मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सबसे उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 5 वर्ष सरकार चलाने का जनादेश मिला है, लेकिन सरकार की कमियों पर प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस लगातार निगरानी रखेगी। निकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने अपने संघीय सांसदों को जनता की आवाज तथ्य, तर्क और अध्ययन के आधार पर संसद में प्रभावी ढंग से उठाने का निर्देश दिया है। एमाले केंद्रीय संसदीय विभाग ने आज चासल स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तथ्यों पर आधारित बहस, जनसरोकार के मुद्दों का गहन अध्ययन और राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर संसद में प्रभावी भूमिका निभाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष केवल सरकार की आलोचना करने वाला नहीं, बल्कि नीति निर्माण में तथ्य और प्रमाण के आधार पर जनता की आवाज बुलंद करने और सरकार को जवाबदेह बनाने वाला होना चाहिए। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि विकास निर्माण का केंद्र मानव और प्रकृति होने चाहिए। इंजीनियर्स एसोसिएशन की 64वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने नई पीढ़ी की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने योग्य युवा इंजीनियरों के विदेश पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए देश में पर्याप्त अवसर, उचित मूल्यांकन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ में 2 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लापता हैं। लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरा बीच में छोड़कर राहत कार्यों की समीक्षा के लिए लौट आए हैं। सुरनकोट तहसील का लगभग 25 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी इलाका सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। बाढ़ से कई घर ढह गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और बस स्टैंड परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने स्कूलों को बुधवार तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों की एक नई शुरुआत की है। बीबीसी फारसी के मुताबिक ईरानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन लाइटनिंग का 17वां चरण शुरू किया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके नागरिक इलाकों को निशाना बनाया था। बयान के अनुसार इस अभियान में कुवैत के कैंप अल अदीरी स्थित अमेरिकी हथियार डिपो को फिर से निशाना बनाया गया। इसके अलावा अली अल सलेम एयरबेस में मौजूद उपकरणों और कर्मियों के केंद्रों पर भी हमला किया गया। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरानी हमलों के प्रमुख निशाने रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के विभिन्न जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार रहने पर जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। बाढ़ और भूस्खलन से कई राजमार्ग प्रभावित, रात में वाहनों के संचालन पर रोक। बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना लाने का सरकार को संसदीय समिति का निर्देश। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा ने नेपाल के लिए संसद द्वारा चुना गया कार्यकारी प्रमुख और मिश्रित निर्वाचन प्रणाली को बताया सबसे उपयुक्त। और भारत के जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ में दो बच्चों और दो महिलाओं सहित 6 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।